السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، آج ایک اور تاک رات ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے اوپر کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم رات کے اس پہر میں بیٹھ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ایک جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، وہ بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں ہماری آخرت یاد رہے، ہم غفلت سے جاگیں. تو آج دیکھتے ہیں اگلی قسط اپنی اس سیریز کی، دنیا کے مسافر. آج بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا آسمان بھی رو رہا ہے. یہ زمین اور آسمان بھی تو روتے ہیں نا جب کوئی ان پر سجدے کرنے والا، رکوع کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، کوئی اللہ کا نیک بندہ چلا جاتا ہے، تو یہ بھی روتے ہیں. اور بعض ایسے فاسق اور فاجر ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، نہ آسمان اور نہ زمین. مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں آل فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے نہ آسمان رویا اور نہ زمین. کتنے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ. میں تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ہسپتال میں داخل ہوا. خالہ صغرا کو یہاں داخل ہوئے آج 15 دن ہو چکے تھے، مگر ان کی حالت بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. میں نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا. خالہ سامنے بستر پر آنکھیں کھولے چھت کو تک رہی تھیں. السلام علیکم خالہ. وعلیکم السلام بیٹا. کب آئے؟ ابھی ابھی داخل ہوا. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ بیٹا. اور ساتھ ہی خالہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. میں قدرے پریشان ہو گیا، انہوں نے کبھی ایسا کیا تو نہیں تھا، اتنی کم ہمت تو نہ تھی. میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما. کیا ہوا خالہ جان، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کیوں روتی ہیں؟ خالہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور پھر کہنے لگی، بیٹا آج بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے. میرے ساتھ والے بستر پر ایک لڑکی تھی، کسی اونچے گھرانے کی اکلوتی بیٹی. آج اس کا آخری وقت جب آیا تو ڈاکٹروں اور نرسوں کا ایک ہجوم لگ گیا کمرے میں. اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، آنکھیں پتھرا گئی تھیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی نرسوں سے کہہ دیا تھا کہ اب کچھ مزید کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ آلموسٹ گون ہے. کہ اچانک اس کے جسم نے حرکت شروع کر دی. وہ یہاں میرے پاس ہی بستر پر تھی، میں نے خود اس کو دیکھا. اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، جسم پسینے سے شرابور تھا، اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے. سب نے سنا، وہ تھرائی بھی آواز میں کہہ رہی تھی، سانپ سانپ، اور جیسے بچنے کے انداز میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی. حالانکہ وہ تو موت کی بے ہوشی میں جا چکی تھی، اور ایسے انسان کا آواز نکالنا یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا. بلکہ اس حالت میں تو کوئی انسان بولنا تو دور کی بات، حرکت تک نہیں کر سکتا. پھر اس کو آخری ہچکی آئی اور وہ ختم ہو گئی. بیٹا میں اس وقت سے سخت خوف زدہ ہوں، میرے ذہن سے اس کی آوازیں نکل نہیں رہیں. پتہ نہیں اس نے کیا ایسا کیا تھا. بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی اس کے گھر والے آتے تھے، اسے کہتے تھے فلاں جگہ کسی بیوہ کو ضرورت ہے، فلاں جگہ کسی یتیم کو ضرورت ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، ان کو ضرورت ہے. تو باوجود اس کے کہ یہ بہت مالدار لڑکی تھی، یہ چڑ جاتی تھی، غصہ کرتی تھی. इसको कोफ्त होने लगती थी और ये बुरा मानते हुए कहती थी, मुझे क्यों कहते हो कि मैं दूं? इसके अलावा मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई और अमल भी हो, वल्लाह हो आलम। मगर बेटा, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो वो क्या करे, कौन उसको बचाएगा? डॉक्टर नर्सें तो जिस्म की हद तक बचाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अल्लाह के अजाब के कोड़े से कौन बचा सकता है? ये कहकर खाला फिर रोने लगी। मैंने उनको गले से लगा लिया और तसल्ली देने लगा, खाला जान आप क्यों फिक्र करती हैं, सब अच्छा होगा। खाला जान ने एकदम मुझे पीछे करके मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, बेटा तुम क्या मुझे बचा सकते हो? मैं खाला के इस अचानक सवाल से हड़बड़ा सा गया, मुझे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। उन्होंने फिर पूछा, बेटा तुम तो मेरे सबसे लाडले भांजे हो, तुम मुझे बचा सकोगे अगर मेरे साथ कुछ हुआ? मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूँ। मैंने आहिस्ता से खाला के सर पर हाथ फेरा और कहा, खाला आप बेहतर है इस वक्त कुछ सोचना छोड़ दें और आंखें बंद करके सो जाएं। शुक्र है खाला ने मेरी बात सुन के आंखें बंद कर ली और मैं अस्पताल से बोझल कदमों से बाहर निकला। वाकई अगर मौत के वक्त अजाब सामने आ गया तो इंसान को कौन बचा सकता है? अगर उस वक्त जहन्नुम के फरिश्ते लेने आ गए तो कौन भला कुछ कर सकता है? ना बच्चे, ना वालदैन, ना रिश्तेदार, ना दोस्त अहबाब और ना ही कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर और नर्स। इंसान तो अभी दुनिया में ही होता है और ये सब प्यारे उसके आसपास होते हैं, मगर किस कदर तन्हा हो जाता है कि कोशिश के बावजूद कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ करने का सवाल तो बात क्या है, लोग तो ये भी नहीं जान सकते कि जाने वाला किस हाल से गुजर रहा है। ये तो सिर्फ वो जाने वाला जानता है या उसका रब जानता है। करीब खड़े हाथ पकड़ने वाले इंसान को भी पता नहीं होता कि जाने वाले पर गुजर क्या रही है, मगर अर्श पर मौजूद रब को सारी खबर होती है एक एक कैफियत की जिससे वह गुजर रहा है। जिसने अपनी मौत के वक्त सांप देख लिए उसके लिए इससे आगे ना जाने क्या होगा। मैं अपनी सोचों में कब गाड़ी में बैठा और कब अपनी दरसगाह तक पहुंच गया। मुझे तो आज यहाँ आना भी नहीं था, मैं तो घर जाने वाला था। पता नहीं कब मैंने गाड़ी इधर मोड़ी। चलो अब आ ही गया हूँ तो एक चक्कर लगा लेता हूँ। मैंने अपनी दरसगाह में दाखिल होते हुए अपने साथियों को सलाम किया। कुछ दूर चलने के बाद एक टीला सा नजर आया, मैं उस पर जाके बैठ गया। ये मेरी महबूब जगह थी, यहाँ से दूर दूर तक सब नजर आता था। हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी, हत्ता कि मुझे अपनी सांस की आवाज भी खुद आ रही थी। मैंने तमाम कब्रों पर नजर दौड़ाई। एक कब्र मेरी नजर के आगे जैसे टिक गई हो। इसके बारे में बाबा जी ने बताया था, इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आए थे, रूबी मीर, 1950 से 2010 तक, 60 साल, इतनी जिंदगी मिली उसको। 60 साल तो काफी ही होने चाहिए। मेरे जहन में अभी ये बात थी कि अचानक एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, हाँ 60 साल बहुत होते हैं मगर उसके लिए जो सबक लेना चाहे। मैं चौंक गया, कोई खातून थी जो कह रही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला 60 साल किधर चले गए, कब गुजर गए। मैंने 60 साल की उम्र पाकर भी गंवा दी। इतना वक्त मुझे मिला मगर मुझे कभी ख्याल क्यों नहीं आया था क्यों मैं पागल हुई पड़ी थी, क्यों मेरी ढलती उम्र मुझे गफलत से जगाने का बाइस नहीं बनी। मैंने खुद को खुद धोखा दिया कि मैं तो बहुत जवान हूँ, बहुत फिट हूँ। अब सोचती हूँ क्या मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं और कितना जी लूंगी। हर साल मेरी जिंदगी से कम हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं 40 से 50 और 50 से 60 की नहीं हुई, बल्कि अभी तक 20 की ही हूँ। मुझे नफरत थी कि कोई मुझे बाजी कहे, आंटी कहे। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं इस धोखे से खुद को निकालना ही नहीं चाहती थी कि मेरी उम्र बढ़ रही है। मैं उन्हीं ख्यालों में रहना चाहती थी जो जवानी के थे। इसी वजह से दुनिया से जाने का कभी ख्याल ही नहीं आया था कि मुझे भी चले जाना। और किसी मैयत वाले घर अगर चली जाती और जहन में कभी कोई ख्याल आ ही जाता कि हो सकता है मुझे भी जाना हो, तो मैं ये सोच के इस बात को झटक देती थी कि अभी तो मेरे से इतने बड़े बड़े बैठे हैं, फलां भी बैठा है, वो इतनी बूढ़ी है, अभी उनकी बारी है, अभी मेरी थोड़ा ही बारी है, अभी तो मैं यंग हूं। मैंने इसी सोच से लोगों को तो धोखा दिया ही हुआ था। जबरदस्त ड्रेसिंग करती थी, मेकअप करती थी, अपने आप को मेंटेन करके रखा था, मगर अफसोस ये है कि ये धोखा दूसरों को नहीं अपने आप को दिया था। ये कभी खुद माना ही नहीं कि मेरी उम्र के इतने साल गुजर चुके हैं, अब मैं ढल रही हूँ। ना ही दूसरों को कभी ये याद करवाने की जुर्रत दी। वो चीखने लगी, क्या मैं पागल हो गई थी? क्या मुझे अकल नहीं थी? क्या मुझे समझ नहीं थी? वो पागलों की तरह ऊंची आवाज में चीखती चली जा रही थी और मुझे लग रहा था आसमान फट जाएगा और आज गिर जाएगा इसके चीखने से। उसकी कर्ब से भरी चीखें थी। बताओ मैंने क्यों नहीं होश किया? बताओ मैंने क्यों नहीं इस घर की तैयारी की? बताओ मैं कहाँ गुम थी? बताओ मुझे, इसके कर्ब ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने बेकरारी से सवाल पूछा, फिर आपके साथ हुआ क्या? मगर वो तो जैसे दीवानी हो चुकी थी, मेरे सवाल से बेनियाज अपनी धुन में बोली चली जा रही थी। मैं किससे शिकायत करूं? मैं अब किसका गिरेबान पकड़ूं? मैं किसको इल्जाम दूं? मुझे ये एहसास इतना सता रहा है, इतनी पशेमानी है कि अगर मैं जिंदा होती तो खुदकुशी कर लेती। हाँ, मैं खुद को मार लेती। तुम नहीं जानते मैं किस कर्ब से गुजर रही हूं, और अभी तो कयामत भी नहीं आई और मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी भी मुझ पर सख्ती का वक्त है, तो आगे मेरा क्या होगा? तुम बताओ अब मैं कैसे वापस जाके सब ठीक कर लूँ? तुम बताओ, तुम तो समझदार हो ना, तुम मुझे बताओ अब मैं क्या कर सकती हूँ? इस कदर बेचैनी और लाचारी से ये पूछ रही थी और मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसके सवाल का। इस खामोश बस्ती में उसकी आवाज का शोर हर तरफ गूंज रहा था। फिर न जाने मुझे क्या हुआ, एकदम मैं फूट फूट के रोने लगा और वो मुसलसल चीखती जा रही थी, बताओ अब मैं क्या करूं? बताओ अब मैं गुजरे वक्त को कैसे वापस लाऊं? मेरे पास तो कोई बहाना नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिला। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मुझे ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी। मेरे पास तो 60 साल की उम्र थी। मेरे सब एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गए। मैं देखती थी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मगर मैंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी और बालों को रंग के सोचा मैं तो अभी जवान हूँ, मैं देखती थी मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, मगर मैंने इस हकीकत को मानने से इनकार कर दिया। मैं देखती थी कि मेरी नजर दिन ब दिन गिर रही है, मगर मैंने इसको खुराक का कसूर कह के इग्नोर कर दिया। मैं देख रही थी कि मेरे जिस्म में उतनी ताकत नहीं रह रही, मगर मैंने इसको विटामिन की कमी करार दे दिया। देखो मेरे पास कितने सारे पैगाम देने वाले पैगाम लेकर आए कि जूबी जाने का वक्त करीब आ रहा है, मगर क्या हो जाता है जिंदा इंसान को कि वो हर पैगाम को नजरअंदाज करता चला जाता है। उसकी नजर कमजोर हो रही होती है, उसके कान ऊंचा सुनने लगते हैं, उसका चेहरा उसको बताता है कि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, उसके बाल सफेद होने लगते हैं, अब उसकी कमर झुकने लगती है, उसकी हिम्मत पहले जैसी नहीं रहती, मगर क्यों वो समझता नहीं है कि मैं किस तरफ को जा रहा हूं, क्यों उसको तब भी याद नहीं रहता कि जाने का वक्त अब करीब आ रहा है। यूं लगता है जिंदगी का नशा ऐसा है जो होश में आने ही नहीं देता, और जब ये नशा उतर जाता है तो होश में आने का कोई फायदा नहीं रहता। उसकी आवाज अब हल्की हो गई थी, यूं लग रहा था वो चीख चीख के थक चुकी है। फिर वो एक ठंडी आह भर के कहने लगी, ये मुझसे कहते हैं अमल दिखाओ, मैं कहाँ से अमल लाऊं, मैं कहाँ से अमल लाऊं, मैं क्या दिखाऊं, मैंने तो कोई अमल जमा ही नहीं किया जिंदगी में, ये कभी ये सोच आई ही नहीं। जुनेद ये कब्र बड़ी खौफनाक जगह है, इसके लिए तुम कुछ जमा कर लेना, वाकई दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, लेकिन इसका धोखा यहां आके खुलता है। जितना भी कोई याद करा दे कि ये धोखा है, मगर इंसान को उस वक्त यकीन नहीं आता जब तक गैब का पर्दा नहीं उठ जाता, जब तक मौत सामने नहीं आके खड़ी हो जाती। मैं वो थी जिसके सामने कोई मरने का जिक्र करता था ना, तो उसको खाने को दौड़ती थी कि तुम्हें कोई और बात नहीं आती, क्या यही टॉपिक आता है, जिंदगी एक बार मिली है, खाओ पियो मजा करो, ये सुनो डिप्रेशन की बातें मत किया करो, सारा माहौल खराब हो जाता है। फिर वो खोखली सी हंसी हंसी, हा, खाओ पियो मजा करो और भूले रहो, भूले रहो और भूले रहो। इंसान भूल जाता है, बला इन्ना रब्बहु कैन बिही बसीरा, तुम्हारा रब तो तुम्हें देख रहा था ना। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो हंस रही है या रो रही है, मुसलसल कही जा रही थी, हाँ बस खाओ पियो मजा करो, खाओ पियो मजा करो, यही तकरार किए जा रही थी, और फिर वो फूट फूट के रोने लगी। ये आवाज दूर हटने लगी और दूर होते होते फिजा में कहीं गुम हो गई, और मेरे तो गोया होंठ ही सिल गए थे, ऐसा लगता था आज के बाद मैं कभी नहीं बोल सकूंगा। मैं आहिस्ता से वहां से उठा और एक इन मकीनों पर एक नजर डाली, इनमें से अक्सरियत धोखा खा चुकी थी, कम ही कोई था जिसने धोखे को पहचान कर उससे जान छुड़ा ली थी। अक्सरियत जानते बूझते धोखे में पड़ी रही और यहां पहुंच गई। अल्लाह ताला हमें सबको समझ अता फरमाए और इस जिंदगी में अपने लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। सुनते हैं एक नशीद।
يا الله.